Ram 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 Narayan 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 अब बोलो साहब।
महाराज जी सुबह एक बात कही थी कि जागृत अवस्था है ये सबसे कमजोर अवस्था है। वो बात दूसरे प्रसंग से वो स्पष्ट नहीं हो पाई, आप इस विषय में क्या कहना चाहते थे? आपकी जागृत अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था का है सत्व गुण का स्वरूप
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं महिषचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्यवनीर्भवत् पीताम्बरारुणलिङ्गफलाधिपोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमस्ते। सुषुप्ते और स्वप्न और जागृत, तो सुषुप्ति तो कभी होती है, स्वप्न की बार आता है, जागृत रहती है। अब मैंने ये सुबह कह दिया कि जागृत अवस्था सबसे कमजोर है, तो ये कमजोर कैसे हुई? ये तो जागृत हरदम रहने वाली है, तो ये विशेष हुई। तो विशेष क्यों लगती है ये? उसमें मैंने अनुभव बताया कि जागृत अवस्था तो है ही, परंतु स्वप्न अवस्था भी एक होती है, सुषुप्ति अवस्था भी एक होती है, इन दोनों का ज्ञान जागृत में है। तो सुषुप्ति ने स्वप्न ने दोनों अवस्थाओं में जागृत के ऊपर तो हावी हो गई, जागृत में तो अपनी सत्ता रह रही, पर स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था है ये ज्ञान नहीं होता है, सुषुप्ति अवस्था में ये ज्ञान नहीं होता है कि जागृत होती है स्वप्न होती है। तो कमजोर होती है वो दब जाती है, और सजोर होती है बलवान रहती है, दबती नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, सुषुप्ति में नहीं रहती, और स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था जागृत में सत्ता रूप से वर्तमान नहीं है, वर्तमान में न होते हुए भी सत्ता स्वप्न की भी है और सुषुप्ति की भी है। ये है कि नहीं? तो अपने न रहते हुए भी अपनी सत्ता है, तो ये जागृत कमजोर हुई। जो जागृत में स्वप्न ने भी अपनी सत्ता रखी है, सुषुप्ति ने भी सत्ता रखी है, परंतु स्वप्न में और सुषुप्ति में जागृत की सत्ता ही नहीं है। ये बात सुबह कही। अब आपको ऐसे शेष कैसे हैं? तो अब एक बात बताऊं, दोनों की जो सत्ता रही तो इसमें जागृत अवस्था की विशेषता है। अब ध्यान देना, मैं जागृत अवस्था को रद्दी कहा, अब कहता हूँ जागृत अवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जागृत में इतना होश है कि स्वप्न को भी हम जानते हैं, सुषुप्ति को भी जानते हैं, पर स्वप्न में इतना भी होश है जिस जागृत को नहीं जानते, सुषुप्ति में इतनी होश बेहोशी है जो स्वप्न और जागृत को नहीं जानते। तो इसमें होश विशेष रहता है, इस वास्ते ये दबती नहीं है, होश विशेष, इस वास्ते जागृत अवस्था श्रेष्ठ हो गया। अब ये बात है, एक दूसरी बताऊं, ये दो बात हुई, तीसरी बात बताऊं कि जागृत इससे रद्दी है। कैसे रद्दी है? अब ध्यान देना, स्वप्न और सुषुप्ति में जागृत अवस्था मिटती नहीं है, दबती है, और जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति मिट जाती है। आगे नहीं ख्याल में, मान अभी स्वप्न नहीं है, अब सुषुप्ति भी नहीं है, तो उनका अभाव हो जाता है। स्वप्न में और सुषुप्ति में जागृत का अभाव नहीं होता, जागृत दब जाती है, ना दब जाती है, तो उसका भान होता है कि स्वप्न आया सुषुप्ति हुई, परंतु जागृत अवस्था मिटती नहीं है, दबती है। जहां शरीर का त्याग हुआ, दूर शरीर की प्राप्ति हुई, तो जागृत अवस्था मिट गई, उस शरीर की जागृत अवस्था मिट गई। मिटने के पीछे होती ही नहीं, स्वप्न का होने के बाद मिटने के बाद फिर हो जाता है, सुषुप्ति मिटने के बाद फिर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जागृत अवस्था मिटती नहीं है, जागृत अवस्था रहती है, जब तक सही रहेगा तब तक। दूसरे जन्म में भी किसी किसी की स्मृति रहती है, तो वास्तव में जागृत में सात्विकता अधिक है, तो इसमें बोध है, तो स्वप्न का और जागृत सुषुप्ति का भी बोध है, इस वास्ते इसमें सात्विकता अधिक है। और उसमें तामस बना सुषुप्ति में अधिक है, कुछ ज्ञान नहीं होता, स्वप्न का ज्ञान भी नहीं होता, परंतु अवस्थाओं में देखा जाए तो सत्ता रूप से अब भी स्वप्न और सुषुप्ति है, पर स्वप्न और सुषुप्ति में इसकी सत्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये दब जाती है और उनका ज्ञान ये रखती है। इस बात से जागृत बढ़िया है, बात सात्विक बताया। तो मेरा मतलब था कि जैसे मैं कहता हूँ एक बात कहता हूँ उदाहरण, फिर कभी को तो उसका विवेचन फिर कर देंगे, अभी विवेचन नहीं करता हूँ, बात बताता हूँ। जैसे रुपया है, रुपयों से बढ़कर वस्तु है, कि रुपया स्वयं काम नहीं आता, वस्तु स्वयं काम आती, चाहे जूती हो पर स्वयं काम आती है, रुपया वस्तु के द्वारा काम आता है, स्वतंत्र काम नहीं आता। अब जूती स्वतंत्र काम आती है, रुपये की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु कीमती है, जैसे अन्न कीमती है, जल कीमती है, वस्त्र कीमती है, मकान कीमती है, जो ये स्वयं काम आते हैं, रुपया स्वयं काम नहीं आता है। रुपया है ये बढ़िया है, वस्तु में बढ़िया है। ज्यादा लोभ होता है तो मनुष्य क्या करता है, इन वस्तुओं को बिक्री कर देता है, रुपये इकट्ठा करता है। तो ये क्या है? ये रुपयों का महत्व है। अभी विवेचन नहीं करता हूं मैं, आप कभी छेड़ो तो ठीक पुर्जा पुर्जा बताऊंगा इनका क्या रुपया क्या है, ये वस्तु क्या है। वस्तु से बढ़ करके है व्यक्ति, याद रखना, विशेष समझने का है। इससे बढ़ करके है व्यक्ति, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, वृक्ष है, पौधा, स्थावर जंगम, जितने जीव है ना, ये शरीर बढ़िया, क्योंकि इनके सबके काम में वस्तु आती है, ये भी काम आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वृक्ष, पौधे, सब काम आते हैं, साग पत्ती अन्न आदि इनसे पैदा होता है, तो ये स्वयं काम आते हैं, गाय का दूध दूध आदि स्वयं काम आता है। और ये वस्तुएं इतना काम नहीं देती जितनी व्यक्ति काम देती है। गाय के पैदा होगी परंपरा पैदा होगी, भेड़ बकरी पैदा होगी, वृक्षों की अगाड़ी पैदा होगी, और इनके बाद में इनको काट दिया जाए तो क्या पैदा होगा, जयराम जी, तो वस्तु तो रहेगी, काम आवेगी, समराई काम आता है, अधिक काम आते हैं, मांस मदे सब काम आते हैं, परंतु इससे आगे पैदा होती वो पैदा मांस आदि से नहीं होती, वो खत्म हो जाता है वही। तो वस्तुओं से बढ़कर के व्यक्ति है, व्यक्तियों में बढ़कर के गाय है, पशु पक्षियों में गाय है, ऐसे पीपल आदि है, वृक्षों में, स्थावरों में, जंगलों में गाय है। गाय का जितना उपकार है इतना कोई पशु का उपकार का नहीं है, और गाय जितनी शुद्ध कोई वस्तु नहीं है, कोई पशु नहीं है, जिसका गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र करने वाला है। तो गौ बढ़कर के, गौ से बढ़कर मनुष्य है, जो मनुष्य कहना सबको काम में ले लेता है, सबको यथायोग कर देता है, तो मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्य विशेष है। और मनुष्यों में मनुष्य विशेष नहीं है, मनुष्य में विवेक विशेष है। सार असार, सत असत, नित्य अनित्य, ये विवेक है, बहुत बढ़िया है। ये जितना विवेक अधिक होगा वो मनुष्यों में ऊंचा बढ़कर रहेगा, विवेक वाला। और क्या है महात्माओं में, संतों में क्या है? घर में भी जो पंचायती करता है पंच बढ़कर रहता है, क्या है? विवेक है, व्यवहार का ही विवेक सही, पंचायती का ही विवेक, पर विवेक है। तो विवेक बढ़िया कीमती चीज है। अब विवेक हो गए, होते होते विवेक होता है सत का और असत का। तो असत से सत विवेक विशेष है, सत की प्राप्ति होने के बाद बस पूर्ण था, अब आगे जाना कुछ नहीं है। वैसे सत सबसे विशेष है, परंतु आज रुपयों को विशेष मानते हैं। रुपयों के आगे वस्तुओं कोई वस्तुओं बिक्री कर देंगे, जमीन बिक्री कर देते हैं, मकान बिक्री कर देते हैं। जमीन इतनी कीमती है कि जितने रुपये सोना चांदी भी नहीं है। सोना चांदी मतलब चोरी हो सकती है, सिक्का है राज बदलने से वो रद्दी हो जाएगा, पर जमीन रद्दी नहीं होगी। इस वास्ते मैं कहता हूँ, संस्था है कोई घर है उसकी जमीन बिक्री मत करो। जमीन बिक्री करने से सारे चीज घाटा पड़ गया आपके, परंतु ये ख्याल नहीं होता किसके, किसी रुपयों का महत्व है। किस जमीन पड़ी क्या काम है, रुपया चाहते थे बिहार में आएगा रुपया करेगा, रुपया ठीक है तो वो जमीन को बेच देगा रुपयों को विषय में, परंतु रुपया और दोनों देगा तो रुपया सबसे रद्दी है। अब सबसे रद्दी कहते ही आदमी घबरा जाता है, सबसे रद्दी कैसे है? सब चीजें रुपयों से होती है, जो वो सोच रुपयों के अधीन है, सबसे रद्दी है तो रुपया है, परंतु इसको समझ नहीं सकते। ऐसे जागृत अवस्था को रद्दी कहने का तात्पर्य, आप चेत करो, होश में आ जाओ। रुपयों की निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, आप होश में आ जाओ कि बढ़िया चीज क्या है। रुपया नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान में विवेक, विवेक में सत, सत की प्राप्ति होने के बाद पर जंग लो ध्वसा परम लाभ हम मन देना, उसके समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। जितना होता असत के भीतर भीतर है, रुपया है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, ये सब असत के भीतर है, ये असत के अंतर्गत है। असत का स्रोत है त्याग होने पर सत की प्राप्ति है। आपका स्वरूप सत है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी का मतलब सत। और क्या अर्थ ईश्वर अंश जीव अविनाशी का अर्थ क्या? सत्य करो और क्या करोगे? है नित्य कायम रहता है, भूत ग्राम स एव अयम भूतो भूतो प्रणीयते, वही है भूत समुदाय भूतो भूतो प्रणीयते। शरीर धारण कर करके जैसे धारण करता है मर जाता है छोड़ देता है, फिर तो असत होता संयोग और वियोग होता है, सत का वियोग भी होता है। सत के साथ में इसका नित्य योग है, ईश्वर अंश है ना, तो पर नित्य योग है सत के साथ, असत के साथ संयोग है। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम, तो दुख के संयोग का वियोग है, जहाँ असत के संयोग का ही वियोग है वहां वो योग है, उसका गीता ने योग कहा है। रुपयों को रद्दी कह देता हूँ तो क्या रुपया को रद्दी कह देता हूँ, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी रुपयों पर ही अवलंबित है। अरे रुपये से बढ़कर वस्तु है, वस्तु से बढ़कर व्यक्ति है, स्थावर है, उससे बढ़कर जंगम है, जंगम में पशु पक्षी आदि है, उनमें गाय है, उनसे बढ़कर मनुष्य है व्यक्ति में, और मनुष्य से बढ़कर के विवेक है, विवेक से बढ़कर सत्य है, विवेक में सत असत और सत विवेक है। तो सत में ले जाने के लिए रुपयों को रद्दी कहते हैं। हम ऐसा नहीं कि रुपयों के तत्व को नहीं समझते, रुपयों को यही लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं रुपयों को। मैं एक रही के जैसे अभिमान की बात करता हूँ, रुपये मैंने रखे हैं, रुपये मैंने छोड़े हैं, तो रुपयों के भाव अभाव दोनों को मैं जानता हूँ। आप रुपयों के भाव को जानते हैं, अभाव को नहीं जानते, तो आपसे कमजोर कैसे हूँ मैं? रुपयों का जो महत्व है वो मेरे अपरिचित नहीं है। मैं देखा हुआ भेंट पूजा ली है, साधु पड़े में रुपये इकट्ठा किया है, लगाया है, खर्च किया है, तो समझते नहीं, तो मैं चुप हो जाते, नहीं समझता व्यापार में, समझते नहीं कमर में, नहीं समझता, समझते नहीं। मैं जितनी बातें कहता हूँ उनमें लोगों के भीतर क्या चीज है, कुछ क्या चीज उसको आप नहीं समझते, मैं समझता हूँ। अपने बुद्धिमानी का अभिमान है, वो अभिमान मेरी बात को टिकने नहीं देता। मैं जानकार हूँ, स्वामी क्या जाने इस बात को, परिवार नियोजन की बात स्वामी जी क्या पता, बच्चा बच्ची कितना पालन करना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है, उन्हें ब्याह करना पड़ता है, कितनी आफत होती है, अब इनको क्या पता स्वामी जी को मुफ्त में रोटी खा गए अपनी, इस पर भारी क्या है, ये क्या समझे, ये मेरे को बेसमझ समझे। इसमें क्या हुआ कि हम बुद्धिमान है, बुद्धिमान का अभिमान मेरी सच्ची बात को टिकने देती था। बुद्धिमानी खराब नहीं कहता हूँ मैं, बुद्धिमानी का अभिमान, हम जानकार हैं तुम अनजान हो, ये क्या है, ये बुद्धिमानी का अभिमान। वो बुद्धिमानी का अभिमान सत्य आदमी को टिकने नहीं देगा। दम्भोदर पो अभिमान, अभिमान संपूर्ण आश्रय का आश्रय है। आश्रय संपत्ति जितनी है निबंध है आश्री मता, ये अभिमान रूपी बहेरे की छाया में कलयुग रहता है। अभिमान की छाया में अवगुण है सब, जितने अवगुण है जितनी आसुर संपत्ति है वो सब के सब अभिमान की छाया में है। और अभिमान प्यारा जैसा लगता है कोई नहीं प्यारा लगता, अभिमान चला जाए तो मानो ग्रह कट गया, किसी का अपमान हो जाए कितना बुरा लगता है, ग्रह कट गया मन ऐसा, इसको सुरक्षित रखना चाहता है। त्याग हम कर देंगे साधु हो जाएंगे, परंतु हम साधु हैं ये नहीं छूटेगा। क्या समझे तुम, हम साधु हैं, हम त्यागी हैं, त्याग के साथ ही अहंकार वही। मैंने एक सज्जन को कहा था आसाम वाले को, देखो है नी तनसुखिया वाले डूंगर, देखिए बुद्धि इतनी कमजोर है डूंगी नाम याद नहीं आता, इतने पढ़ते थे इतना पद गाते थे इतना करते थे वो नाम याद नहीं आता। एक बार काम पड़ा डोंगी के साथ तो एक आदमी को उतार दिया गाड़ी से, तो मैं उतर गया गाड़ी से, क्यों उतार रहा है, मैं उतर जाऊंगा, आप अपने समझते हो कि मैं राय बहादुर हूँ, बड़ा हूँ रुपया में, पर फिर रुपये पास मेरे नहीं है, ये अभिमान तुम्हारे से कम नहीं है। तुम्हारे रुपयों का अभिमान है कि मेरे पास रुपये हैं, मेरे पास रुपये नहीं है, ये अभिमान आपसे कम नहीं है। आप क्या समझते हो आप कैसे छोटा समझते हो, अरे रुपयों का अभिमान है, रुपया नहीं है इसका अभिमान है। विद्वान के विद्या का अभिमान है, हम पढ़े हुए नहीं है अभिमान है। लखपति करोड़पति के नौकरी करते हैं वे भी आपस में करते हैं कि सेठ में अकल नहीं है, रुपया तो हो गया कोई भाग से हो गया, अकल नहीं है, तुम बेअकल के क्यों नौकरी करो भाई। इसका नाम किसका नाम है, ये अपने जानकारी के अभिमान की आवाज है, मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ, ये अभिमान, वो अभिमान भरा हुआ हमारी सच बात को पकड़ नहीं देता है। हम समझते हैं, आप समझते क्या हो, बेसमझी का पूतला हो, क्षमा करना भाई, आप सब जगह ईश्वर रूप है साक्षात, परंतु चेत कराने के लिए कहता हूँ, ये चेत कराने की होश में आओ, इसके लिए मैं कहता हूँ। तो होश में लाने के लिए जाकर अवस्था को बताया, आप इसको महत्व देते हो, ये सबसे रद्दी है, ये महत्व इसका नहीं है, इस वास्ते मैंने कहा। मानो जागृत के पदार्थों को बड़ा महत्व देते हो, अब उसमें महत्व जाने में ये बात है, कल अपन देख रहे हैं वो याद देखते हैं, स्वप्न कहाँ है कल वाला, सुषुप्ति कहाँ है, तो सुषुप्ति तो हो जाती तो पता नहीं, परंतु जागृत अवस्था तो रहती है। आज जागृत अवस्था है परंतु इस जन्म से पहले जागृत से वो जयराम जी थी, नहीं बता सकते हम किसी की, जो याद रह गया भाई अलग है, वो जाति स्मरण होता है, जाति का स्मरण होता, तो ये बात है मेरा, अब बोलो ठीक हो गया। अब एक बात बताऊं, थोड़ा सा बुद्धिमानी का अभिमान छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं है। जैसे आप ही तक रात मेरे और मनमोहन जी की बातें हुई, जिसमें मैंने बताया कि आज्ञा पालन है ना, कहना कहना ही बहुत ऊंची चीज है। मुफ्त में जैसे गोद जाने वाले को धन मुफ्त में मिलता, कमाया कमाया, ऐसे अगर आज्ञा पालन करे तो धनी की जब धन मिलेगा, महात्मा का महात्मा पण मिलेगा, तब तक जीवन मुक्ति का जीवन मुक्ति मिलेगी। उसी पास जो धन है वो धन आपको मुफ्त में मिल जाएगा, केवल उनकी आज्ञा पालन करने से। इस विषय में बात चली तो उसके पास तत्व है, वो तत्व मिल जाएगा, परंतु आज्ञा पालन करेगा कब, जब अब अपना अहंकार दूर होगा तब। अपने अहंकार को रखे तो आज्ञा कौन पालन करेगा, क्यों करेगा, मूर्ख की बात कौन मानेगा। तो मैं समझदार हूँ और तुम बेसमझ हो, तुम्हारी बात कैसे माने हम। तो दूसरे को समझदार मानना, वैष्णव की एक बात याद आ गई, कई वर्ष वैसा मा सकिया था वैष्णव में, कौन सा वर्ष था याद नहीं है, 2005 की बात है। अब कितना वर्ष हो गया, 2040 वर्ष हो गए, 2005 की बात है। उस दिन मैंने सभा में कह दिया कि आप समझते हो कि स्वामी जी जानते हैं, तो मैंने एक छोकरा 5-7 वर्षों का था, ये छोकरा मेरे से ज्यादा जानता है, मेरे से ज्यादा जानता है, तो आश्चर्य होता है सब कुछ कि आपसे कैसे ज्यादा जानता है। मेरे से पूछे इसकी माँ कौन सी है, तो मैं नहीं बता सकता, ये बता दे मेरी माँ है, तो जानकार ज्यादा हुआ कि नहीं, किसी विषय में इसमें क्या बात है, किसी विषय में तो जानकर आदि है ही, ये माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, मेरे को पूछेंगे छोड़ा घर कौन सा है, माँ बाप कौन है, बहन भाई कौन है, मैं नहीं बता सकता, तो मेरे से ज्यादा जानता है ना। तो किसी विषय में आप जानकार हो गए तो किसी विषय में दूसरे जानकार है, तो आपसे कम कैसे हुआ, टोटल में कम कैसे हुआ, किसी विषय में आप जानकार विशेष है, किसी विषय में वो जानकार विशेष है। किसी आदमी को आप व्याकरण नहीं कह सकते, ये बेसमझ है, समझ है अपने अपने अलग है, सब में समझ है सब में, और सब में समझ वो ऐसी विलक्षण है कि दूसरे को पता नहीं है, दूसरा नहीं बता सकता। जब अजलिंगा जो जानता है, मेरे को लग मैं नहीं पहचानता, ये सत पहचानना ऐसा, सोना देख कर पहचान लेगा, आग में रख कर पहचान लेगा, घस करके पहचान लेगा, पैर पर रख कर ऊपर थोड़ा मारे जिसमें पहचान लेगा। बोलो, ये चार चीजों से एक परीक्षा होती है, हमने सुने चार से होती है। यथा चतुर्भिर कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापतार, नहीं काटने से निघर्षण घसने से और निघर्षण छेदन काटने से और तपाने से और तारने से चार परीक्षा होती है सोने की। तो ये बातें तो मैंने भी सुन ली, और मैं भी कह दू बट ये परीक्षा अगर जैसी परीक्षा कर लू गया मैं तो ज्यादा हो गया ना जानकार। अब किस विषय में हो ये बात एक अलग है, कोई किसी विषय में जानकार, कोई किसी विषय में जानकार, कोई किसी विषय में पंडित है, पर अनजान का नहीं असर होता, किसी विषय में जानकार है वो। अब आप जितना जानते हो व्यापार आदि के भी, उसमें उसमें मैं उतना नहीं जानता, परंतु उस जानता हूं मैं भी। जैसे सोने की बात बताई था, इस हाथ चतुर्भी कनकम परीक्षा थे निदर्शन छेदन ताप तार नहीं, ऐसे चतुर्भी पुरुष परीक्षित है कुलेन शीलेन और त्यागेन कर्मण, चार से मनुष्य की परीक्षा होती है। परीक्षा कैसा है मनुष्य, पारदार जैसे होती सोने की जो परिचय हो जाए तो त्यागी स्वभाव स्वभाव से त्याग से और कर्मों से कर्म कैसे हैं अरे बैराग कैसा है त्यागी न सीधी न गुणी न कर्मना सिर स्वभाव से और गुण कैसे हैं और कर्म क्या करता है इनसे मनुष्य की परीक्षा होती है। तो मनुष्य की परीक्षा होती है इन चीजों से। अपने कहते हैं धनवान ऐसा बड़े आदमी आ गए दूर से इकट्ठी करी दूर रहा धन उनसे बड़ा हो गया कहाँ बड़ा हो गया फजीती हुई है फजीती धन से आप बड़े हुए हो आपकी हुई है फजीती बाहर की चीज इकट्ठे कर बड़े बन गए तो आपकी फजीती इज्जत नहीं बढ़ी है इज्जत आपकी स्वयं की होती धन के अधीन नहीं है धन सब चला जाए तो हमारी इज्जत बनी रहेगी शरीर चले जाए तो इज्जत बनी रहेगी वो इज्जत आपकी है ये इज्जत धन की है पद की है क्या ये मिली हुई बिछड़ने वाली क्या इज्जत है इसी तरह से इन अवस्थाओं की और इस जीवन और सत्य से सब रद्दी है जाते ही सब रद्दी है तो सत्य की खोज जो करता है वो श्रेष्ठ हो जाता है सत्य की खोज करके सत्य की प्राप्ति कर देता है वो महात्मा होता है। तो शेष थे ऐसे मैं शेष जी के पास आया साधु होकर के साधु के पास तो शेष जाते ही है शेष के पास साधु जाता है तो मैं शेष लेकर के नहीं आया धन लेकर के नहीं आया धन को लेकर आप जानते हैं कि पैसे धन के पास से समझ आए शेठ शेठ में कहता था लोग कहते हैं स्वामी जी है श्रेष्ठ श्रेष्ठ का शेष बना है तो सबसे श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है कि सत्य को प्राप्त कर लिया है वो श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त करने वाला जितना श्रेष्ठ है दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं होता इंद्र भी नहीं है पद से ब्रह्मा जी भी नहीं है तत्व से है पद से कोई बड़ा हो जाए कोई नहीं पद से तो वही बड़ा है जो शक्ति को पहचान लिया और प्राप्त कर रही है उतना कोई बड़ा नहीं है और एक विचित्र बात बतावे उस सत्य की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र अधिकारी है धन के सब अधिकारी नहीं है वैभव अधिकारी नहीं है जमीन जायदाद के अधिकारी नहीं है सबको बरोबर पैसा नहीं है सबके पास अकल नहीं है सबके पास बल नहीं है सबके पास बुद्धि नहीं है सबके पास इतना परिवार नहीं है सबके पास जमीन नहीं है सबके पास मकान बरोबर नहीं है पर सत्य की प्राप्ति में सब बरोबर है किसी कृष्ण बात है जो सर्वोपरि तत्व है उसकी प्राप्ति में सब बरोबर है कोई भाई कोई बहन पीछे नहीं है कमजोर नहीं है अब आप प्राप्त न करें वो आपकी मर्जी है अगर करना चाहें तो सबके सब उस सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चौड़ है वो रामगढ़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नाही संतदास जीते सब ले जाए तो सत्य की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो कोई क्या हो सत्य की प्राप्ति में सब अधिकारी है तो सबसे बढ़िया चीज है उसके अधिकारी सब है छोटे बड़े पढ़े लिखे अपाठ सब उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं केवल लालसा सत्य की प्राप्ति की लालसा मैं सत्य की लालसा तब जगेगी जब असत्य की लालसा मिटेगी असत्य की लालसा मिटाने के लिए अवस्थाओं का और ये द्रव्यादिक पदार्थों का मैं विवेचन करता हूँ कि असत्य की लालसा मिटे और सत्य की लालसा जागृत हो जाए ये हमारा उपयोग है भाई सत्य की लालसा मात्र से कोई चीज नहीं मिली धन लालसा मात्र से नहीं मिलता मान बढ़ाई लालसा मात्र से नहीं मिलता बल बुद्धि धन वैभव घर लालसा मात्र से नहीं मिला और सत्य लालसा से मिलता है क्यों कि सत्य के साथ हमारा नित्य संबंध है अभी बताया ना नित्य योग है उसके साथ नित्य योग है वियोग हुआ ही नहीं वियोग तो जिसका उत्पन्न होकर नष्ट होता उसका होता है वियुक्त होने वाली सत्ता है वो है नित्य सत्ता तो नित्य सत्ता के साथ ही योग रह जाए उसको कहते हैं नित्य योग तम विद्या दुख संयोग वियोगम नित्य के इस बात है दुख का संयोग है वहां दुख यो ने ये मते आद्यंत अंत कौन थे नाते सुगमते ओधा अनित्य का संयोग, संयोग किसका दुख का, दुखों से अधिक अधिक हो जाए, दुख संयोग विजयोग योग संगीतम, योग क्या होगा, नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी, वो योग संगीतम सदस्य योग तो योग हो जाए, उस नित्य योग को प्राप्त करना चाहिए। नारायण 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 नारायण।
राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में विक्रम समय 2047 श्री कृष्ण समय 5216 ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी 16 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।